ओम शांति। आज का टॉपिक एक नशे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। खुला भाई और बड़ा वॉल्यूम। नशे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे, भगवान और भाग्य। भगवान को ढूंढते थे, भाग्य को कोसते थे। भगवान मिलेगा भी इसकी कोई गारंटी नहीं थी या थी, कुछ नहीं पता था। बुलाते भी रहते थे पर आएगा भी नहीं, या कब आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को अंदाज नहीं था। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिनको बाबा का ज्ञान बाबा के द्वारा मिला, पुस्तकों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, किसी गुरु से नहीं। और संपूर्ण सत्य ज्ञान की पहचान क्या है? सहज और सरल, बोलते जाओ, आप सब जानते हैं। नहीं, संपूर्ण ज्ञान की पहचान नहीं। किसी को संपूर्ण ज्ञान मिल जाए तो क्या होगा? खोज समाप्त हुई। जितने भी लोग संसार में सत्य ज्ञान को खोजते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर भी खोज चालू रहती है। किससे पूछो, चारों वेद पढ़ लिए, कोई कहेंगे हम चारों वेदों के विद्वान हैं, खोज समाप्त हुई, उनसे पूछो मिल गया परम सत्य? नहीं, हमें परम सत्य मिला तो बड़ी पहचान हुई कि अब कुछ खोज नहीं रही, या रह गई भाइयों की। बोलो, किसी की रही हो तो पूरी करा दें, नहीं रही मुक्ति क्या होती है? सबको पता, माताओं को मुक्ति क्या होती है पता है? उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं पता। नहीं, माताओं को पता ही नहीं, देखो घर जाना है। नहीं, मुक्ति क्या होती है? छलकाओ अपना ज्ञान कलश। अरे ये भी नहीं पता तो कोर्स दोबारा कर लो भाई। नहीं नहीं नहीं, शांति धाम में जब हम हैं तो मुक्त अवस्था है, सीधा सा उत्तर। घबरा क्यों गई माताएं? या नहीं पता मुक्ति बड़ी या जीवन मुक्ति? लोग सोचते रहे मुक्ति सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति, उसके बाद कोई प्राप्ति नहीं बचती। हमें मुक्ति का सहज और संपूर्ण ज्ञान मिल गया, शास्त्रों से नहीं मिला। आप सबको पता हो, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये तो किसी को पता ही नहीं कि मुक्ति में कहां रहना होगा, बिल्कुल नहीं पता है। किसी की मान्यता लीन हो जाएंगे। ये तो हमें पता है ना कि मुक्ति में परम धाम में रहना है। दुनिया में विद्वानों को मैं पूछता रहा हूं प्रश्न, ये कहां रहोगे मुक्ति में जाके? परमात्मा के पास। बोलो क्या पूछना चाहिए आगे? हैं? और क्या पूछना चाहिए? जब आप पूछेंगे परमात्मा कौन है, कहाँ है, तो क्या कहेंगे? सर्वव्यापी है। तो मैंने उनसे पूछा, सर्वव्यापी है इसका अर्थ है कि तुम भगवान के पास रहते हो, ठीक बात है? तो उसे छोड़ के कहां जाओगे? मुक्ति के बारे में और बहुत चर्चाएं होती रही। दो चर्चाओं की चर्चा मैं आपके सामने, एक हुई कि क्या मुक्ति के बाद लौटना पड़ता है या फाइनली चले गए, दोबारा नहीं आएंगे। तो दो मत रहे, दो मत हैं इसमें भी। एक मत है फाइनली चले गए, लीन हो गए। दूसरा मत है आना पड़ता है। उनका तर्क है कि अगर मुक्ति के बाद कोई यहां आया नहीं तो किसने बताया कि मुक्ति बहुत अच्छी है। उस रस को चख कर आए हैं तो मुक्ति की इच्छा है। अब ये भी किसी को पता नहीं कितना समय रहना है। आप सबको क्लियर है मुक्ति में आप कितना दिन रहेंगे? माताओं से फिर प्रश्न है, बताओ। थोड़े से दिन। भाई लोग कितने दिन रहेंगे? थोड़े से। बाबा क्या करते हैं, जो पहले पहले आने वाली आत्माएं वो तो बस जाएंगी आएंगी टच करके, क्योंकि वहां दिन रात नहीं होते, उस समय से परे का लोक है। वहां हम कितना दिन रहे किसी को पता नहीं चलेगा। जो 5000 साल से 2-4 साल ही कम रहे, 50-60 साल कम रहे, उनको भी ये अंदाज नहीं रहेगा कितना समय वहां रहे, क्योंकि वो बियॉन्ड टाइम, समय से परे की स्थिति है। तो बाबा ने हमें मुक्ति का ज्ञान दिया, जो शास्त्रों में बहुत बड़ा बहुत जटिल होगा या नहीं होगा, बड़ा कंफ्यूजिंग, बाबा ने स्पष्ट कर दिया। तो खोज समाप्त हुई, संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया। दूसरी बात मैं आपके सामने करूं, किसी भी विद्वान से, शंकराचार्य से, जगत गुरुओं से पूछ लो कौन हूं मैं, इसका भी क्लियर उत्तर नहीं मिलेगा। कहां रहती है आत्मा, क्लियर उत्तर नहीं। आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता रहा हूं। कोई कहेंगे दिल के अंदर, कोई कहेंगे भ्रकुटी के बीच, कोई कहेंगे यहां ऊपर ब्रह्मरंध्र कहते हैं, और कोई ये भी मानते हैं कि सारे शरीर में ही रहती है। तो अलग अलग मान्यताएं हो गई। आत्मा कितनी है? आत्मा तो परमात्मा ही है, लोग ये मानते रहे। एक मान्यता के अनुसार दो चीजें हैं, एक परमात्मा दूसरी आत्मा। आत्मा भी एक बहुत नहीं, एक है तो ये भिन्नता क्यों, इसके उत्तर है उनके पास, पर वो गलत है। वो सोचते हैं ये भिन्नता मन बुद्धि की है। किसी को ये पता नहीं कि मन बुद्धि भी आत्मा की ही शक्तियां हैं। तो बाबा ने हमें सत्य ज्ञान दिया। भगवान, जिसको भगवान कहते थे, वो स्वयं हमारे पास आ गए। क्या बनकर? परम शिक्षक बनकर, परम सद्गुरु बनकर। भाई लोग इधर बैठेंगे। परम सद्गुरु बनकर, सच्चे मित्र बनकर, परम शिक्षक बनकर आ गए। इस बात पे आप ध्यान दें। बाबा मूल्यों में, साकार मूल्यों में बहुत कहते आए, तुम्हें नशा रहना चाहिए, हमें कौन पढ़ाता है। बहुत बड़ी चीज हो गई ना। आपने बाबा के शब्द सुने हैं, कलयुग में मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते हैं, सतयुग में देवता देवताओं को पढ़ाते हैं, और तुम्हें पढ़ाते हैं स्वयं ज्ञान के सागर। है ना नशा? तो हम बहुत बड़े स्टूडेंट हो गए। ये माताएं सोचती हम तो पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे। माताओं को नशा ही नहीं चढ़ता कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं। चढ़ाओ नशा आज। कम पढ़े लिखे नहीं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इसी पढ़ाई से तो MSc की डिग्री मिल रही है नीचे, पता आपको? कोर्स चल रही है, यही पढ़ाई है वो जो आप सबके पास है। माँ उसको एक भाषा दे दी गई है, उसको लिखा जाता है, नंबर मिलते हैं, MSc डिप्लोमा, MSc MBA PhD सब मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन है भाइयों में, हाथ उठाओ। अरे डर से डर रहे, ऐसे करके फिर ऐसे कर ले, क्यों? लज्जा की बात है क्या? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड, बाबा के बच्चे हैं, माताएं तो हैं ही। फिर मैं सोचा भाई कहेंगे माताओं से ही पूछ रहे हैं, हैं सभी, बहुत बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं। मैं आपको बता दूं थोड़े से, मैं कॉलेजों में जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है उसको लोग विद्या नहीं कहते, वो है इन्फॉर्मेशन, सूचना, केवल जानकारी, विद्या नहीं है, ज्ञान नहीं। ज्ञान होता है आत्मा का, परमात्मा का, मुक्ति का, स्वर्ग का, पूरे चक्र का, इसे ज्ञान कहते हैं। इससे ही बुद्धि दिव्य बनती है। तो सभी अब कितने नजदीक पहुंच गए बाबा के, जो भगवान थे वो बोलो हमारा हो गया। ये तो न समाताओं को बहुत रहता है, मेरा बाबा, कुछ और आए या ना आए, मेरा बाबा सबसे बड़ा नशा है, सबसे बड़ा नशा है, छोटा नशा नहीं है। भगवान मेरा है, उसका सब कुछ। बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, उस पे हमें जरा ध्यान देना है। भगवान पर भी हमारा अधिकार, चिंतन करना इस पे सभी, ये छोटी बात नहीं है। एक बार, वो भी उसको जो इसको समझ ले। भक्ति में हाथ ही जोड़ते रहे, मांगते ही रहे। बाबा तो कहते हैं मांगना भी नहीं आता था, इतने बड़े भगवान से क्या मांग रहे, भगवान बच्चा दे दो, बस बस हो गई खुशी, संपूर्ण आनंद आ गया, बच्चा मिल गया, बच्चे को पास करा दो। और छोटी चीज, पढ़े या न पढ़े पास करा दो। माताएं मंदिर में प्रसाद चढ़ाने जाएंगी, बच्चे को पास करा दिया भगवान ने। कितनी छोटी मांग थी, और अब बाबा ने क्या कह दिया बोलो, नशे की उत्तर है, विश्व की बादशाही तुम्हारी। ये छोटी चीज तो मांगनी नहीं पड़ेगी, न पैसा, न बुद्धि, न बच्चे, ये सब भरपूर रहेगा। वहां कोई ऐसा होगा जिसको बच्चे ना हो? 3.5 युग तक भी ऐसा नहीं होगा, आधा कलयुग बीतने के बाद ये समस्या घरों में आएगी, क्योंकि पाप बढ़ेगा बहुत, उसका परिणाम ये मिलेगा। तो बाबा हमारा हो गया, वो परम शिक्षक बनकर आ गया, और वो आ गया हमारा सद्गुरु बनकर। तो क्या गारंटी दे दी, बोलो बोलो, मैं आप सबसे आज बुलवाना चाहता हूँ। क्या गारंटी दे दी, ठीक बोल रहे हैं, सब ठीक बोल रहे हैं, साथ ले जाऊंगा। कहीं और जगह चले गए, बाबा को भी लगता है ये कहीं और जगह चले गए तो साथ ले जाऊंगा। और जो बहुत प्यारे बच्चे होंगे, बहुत पढ़े होंगे, उनके लिए क्या कहता है बाबा, पलकों में छुपा कर, नैनों पर बिठा कर। ये प्यार की भाषा है, कोई यहाँ बैठाएगा नहीं, ये प्यार की लैंग्वेज है, ले जाऊंगा। और क्या गारंटी कर दे, मुक्ति जीवन मुक्ति, 21 जन्मों की गारंटी, न कोई रोग होगा, न शोक होगा, न कमी होगी, न कोर्ट, न कचहरी, न पुलिस, कुछ नहीं, आनंद ही आनंद। कल्पना करो सतयुग की, कल्पना है नहीं हम सबको, मैं खुद भी सोचा करता हूँ, एक एक का घर कितना बड़ा होगा, है एक एक बोले सुनने में पूरे माउंट आबू जितना बड़ा भारी। हमारे यहाँ जो हमारा नेटिव टाउन है, वहाँ एक मैजिस्ट्रेट आते थे, बड़े मजाकिया थे। जब बाबा ने कहा राजा की, जो राजाओं के महल होंगे वो दिल्ली जितना बड़ा होगा, तो उसने कहा बाथरूम तो उसका हमारे टाउन जितना बड़ा हो, बड़ा मजा किया था, अभी तो शरीर छूट भी। कल्पना करो एक एक का घर कितना बड़ा, ये नाप तोल नहीं होगी जो अब होती है, सौ गज ले लो, 200 गज ले लो, 500 गज मिल गया तो बहुत बड़ा घर हो गया। वहां खुला है, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हें मैं विश्व का मालिक बनाता हूँ, खुला होगा, बना लो घर जितना बड़ा चाहिए। हर एक के घरों में उनकी खेती, सुंदर तालाब, बहुत अच्छे गाय और फल फूल, खाने पीने के सब साधन महलों में ही होंगे। हर एक के घर बड़े होंगे, केवल उनके छोटे होंगे, बताओ जिन्होंने यहाँ कमाई नहीं की है, जिन्होंने बाबा के घर बनवाने में मदद नहीं की, जिन्होंने यज्ञ में जो स्थापना हो रही है उस पे ध्यान नहीं दिया, उनको छोटे घर मिलेंगे। पर छोटे घर भी इतने छोटे नहीं, कम से कम मधुबन जितना तो होगा ही। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है, वहां अंतर जरूर महसूस होगा। भाई जिसको कम है उसको लगेगा जरूर इनके पास बहुत ज्यादा है, पर दुख नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, इसलिए सुख ही सुख होगा। बाबा ने एक बार वहां के महलों की भी चर्चा की थी, जो विश्व महाराजन है उनके पूरे महल सोने और हीरों के ही होंगे, वो तो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि उसमें रहने वाले केवल विश्व महाराजन, लक्ष्मी नारायण और उनके दो बच्चे नहीं, उनके दास दासी और उनका पूरा कम से कम 500 का परिवार, 500 होंगे एक एक के साथ, बहुत कुछ और भी डेकोरेशन ब्यूटी, जैसे आजकल पुलिस खड़ी रहती है वहां, पुलिस नहीं होगी पर होंगे, शोभा के लिए होंगे, खड़े होंगे कुछ कुछ लिए हुए, सुंदर वेलकम करने वाले, तो उनके महल होंगे एकदम सोने के हीरे जड़े हुए बड़े बड़े। जो साहूकार हैं उनके महल कैसे होंगे, ईंटों के बनेंगे, पहले ईंटें भी गोल्डन होंगी, उनके ऊपर सोना चढ़ेगा, उसमें हीरे जड़ेंगे, वो भी किसी को पता नहीं चलेगा अंदर कोई ईंटें हैं, और नीचे वालों के सोना और चांदी मिक्स, चांदी के बन गए, बीच बीच में दरवाजा सोने का, बुर्जी सोने की, सजावट सोने की, और छोटे चांदी चांदी वाले। बाबा ने ये भी कहा था जो बिल्कुल छोटे होंगे गोल्डन ईंटों के, वो भी लगेगा सोने के चमक रहे, बीच बीच में भर देंगे कुछ, तो कितना सुंदर संसार होगा। प्रकृति की आप तुलना करो जरा, प्रकृति की कल्पना करो, कहीं आपने देखी हो सुंदर प्रकृति, हमें तो देखने को मिलती है, कहीं कहीं बाहर जाते हैं तो बहने ले जाती हैं, हमने मुगल गार्डन भी देखा, देखते ही रह जाएं, इतना सुंदर ये फूलों का, और यहाँ के फूलों में तो सुगंध कुछ भी नहीं है, खराब भी आती है कहीं कहीं से तो, हैं फूलों को सूंघोगे तो फेंक ही देंगे, फूलों में इतनी सुगंध हो कि हवा जो चलेगी सुगंधित, सारा दिन सुगंधित हवा चलेगी, रोज शाम को हल्की बरसात हुआ करेगी थोड़ी देर के लिए, इसलिए प्रसिद्ध है इंद्र की अमरावती में रोज शाम को इत्र छिड़का जाता था, ये उसकी निशानी है। तो कैसा सुंदर समय आएगा, और कितना समय रहेगा ये सुंदर समय, 2500 साल तो पूरा पूरा, और फिर एकदम लोप थोड़ा ही हो जाएगा, पूरा द्वापुर बीच चलेगा। अब सोचो सोने के महल अगर भूकंप हुए कुछ नीचे भी चले गए, लेकिन ऊपर भी तो रहेंगे, सारे थोड़ा ही नष्ट हो जाएंगे। अथाह धन संपदा द्वापुर में भी दिखाई गई है, दिखाया वहां भी, ताले भी नहीं लगते थे, हमारे होते होते ताले नहीं लगते थे, कोई बहुत बुजुर्ग माता उसको पता होगा, ताले नहीं लगाते थे घरों में। तो इतना सुंदर संसार बाबा हमारे लिए रच रहा है, तो भगवान और भाग्य, सबसे बड़ा भाग्य सुनाओ। मैं कई बार सुना है यहाँ तो क्लास में, सुशील तुम्हें याद होगा, बाबा की मुरली से है, हाँ, स्वयं भाग्य विधाता ही हमारा है, इतना बड़ा भाग्य, स्वयं भाग्य देने वाला ही हमारा है, अगर इस नशे में हम रहें तो भाग्य चमकता जाएगा। और सोचो एक सुंदर विचार हम सबको अपने अंदर समा लेना है, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूं, मेरे जैसा भाग्यवान कोई, इसको समाओ अपने अंदर। ये छोटी बात नहीं है, पता तो हम सबको है, पर इसको अपने चिंतन में लाना है, क्योंकि ये चिंतन और ये नशा हमारे भाग्य को चमकाएगा। कोई आपको मिल जाए, आपके फ्रेंड्स, आपके संबंधी, जिनका भाग्य उनको साथ न देता हो, दुनिया में बहुत हैं ऐसे लोग, भाग्य साथ नहीं देता, उन्हें आप सिखा दो रोज सवेरे उठकर वो पहले तो लिखा करें, मैं बहुत भाग्यवान हूं। 21 टाइम लिखें, 21 बार, क्योंकि उन्हें नशा नहीं चढ़ेगा शुरू में, फिर धीरे धीरे उन्हें सिखाओ कि वो आंख खुलते ही 5 बार याद करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। धीरे धीरे उनसे होगा, क्योंकि भाग्य लंबे समय से साथ नहीं दे रहा है, अनुभव होगा उन्हें भी और सबको, भाग्य जगने लगा। जब मनुष्य अपने भाग्य रोने रोता है ना, रोज सोने लगता है, कईयों को तो आदत ही पड़ी है, हमारा तो भाग्य खराब है, दिन में एक दो बार बोल ही देते हैं। माताएं तो नहीं बोलती ऐसा, कोई बोलती हो तो ठीक कर लेना, हमारा भाग्य खराब नहीं है। हाँ, तब से क्या है ही नहीं, सोच लो हम पूरे कल्प भाग्यवान ही रहेंगे। अब बीज बो रहे हैं, हमारे जो संकल्प हैं ये बीज हैं। अब एक बीज की बात आप देखो, खेती किस किस के घर में है आप में से? अच्छा, देखा किसने खेतों को उगते हुए? बहुतों ने। अब देखो आप, आपने गेहूं का एक बीज डाल दिया जमीन में, उसके ऊपर मिट्टी है, अब मिट्टी को चीरते हुए गेहूं का जो अंकुर निकलेगा वो बाहर आ जाता है ना, एक डंडी से, देखा सबने? अब वो डंडी कितनी नरम है, उस पर अगर पैर पड़ जाए तो वो खत्म हो जाएगी, और वो मिट्टी को चीरते हुए बाहर आ गई। सोचो आप कितना बड़ा रहस्य है इसमें, उसमें ताकत नहीं है बिल्कुल, वो जरा सा, इतना सा, बिल्कुल कोमल, लेकिन वो बाहर आ रहा है। बीज में बहुत ताकत है, हम अपने जीवन की खेती में सुंदर बीज बोए, कितनी भी कठोर भूमि हो गई हो ना, चीरते हुए पौधा बाहर आ जाएगा भाग्य का। सभी ध्यान दें, हम जीवन की खेती में रोज अपने मन में कैसे बीज बोते हैं, ये सबको सीखने की और सिखाने की बात है। अगर हमारे युवा वर्ग को या नई पीढ़ी को, जो बच्चे हैं ना 5-6 साल से बड़े, उन्हें ये बात सिखा दी जाए, सुंदर संकल्पों के बीज वे जीवन की खेती में बोएं, तो शायद उनका भविष्य कुछ और चमकीला हो जाए, जो ये आजकल की माया है इससे भी वे बच जाएंगे। आप करें अपने अपने घरों में, पसंद है, माताएं करेंगी ये काम, छोटे बच्चों से ही उन्हें अच्छी बातें सिखाएं, जो सिखाते हैं ना ओम शांति, शिव बाबा कौन है, तुम कौन हो, माताएं सिखा देते हैं ना, बच्चे फटाफट सीख जाते हैं। कुछ ऐसे 4-5 सुंदर संकल्प सभी बच्चों को सिखाने लगो, तो बहुत सारे बच्चे उन्हें ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि जब वे बच्चे हैं तब उनका अंतर मन बहुत ज्यादा एक्टिव है। ये सभी माताओं को जानना चाहिए, बहुत एक्टिव है। हम ये न सोचे छोटे बच्चे बुद्धिमान नहीं है, वो बड़ों से ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन उनकी बुद्धि अभी एक्टिव नहीं हुई है। जैसे संकल्पों के बीज उसमें भर देंगे, वही उनका जीवन बनेगा। क्या बीज भर देने चाहिए, कौन से संकल्प, अब भाई लोग बताएंगे। हाँ, बच्चों में संकल्प बताओ, अब मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, है जो भी माताएं कर सकें अपने बच्चों को 4-5 साल की आयु से जब उन्हें नींद से उठाओ तो उन्हें ये संकल्प दो, बुलवाओ मुख से, बल्कि आप कहो तुम बहुत बुद्धिमान हो। अगर आपके घर में 2 साल का 1 साल का बच्चा भी है ना, उसके पास जाकर आप बोलो तुम बहुत बुद्धिमान हो। आपको पता होना चाहिए आपके इन संकल्पों के वाइब्रेशंस वो बच्चा ग्रहण कर लेगा। दूसरा संकल्प, तुम बहुत महान हो, उनसे बुलवाओ मैं महान आत्मा हूं। समझ रहे हैं ना, पक्का करेंगी माताएं शुरू करेंगी इसका। तीसरा संकल्प, मैं बहुत चरित्रवान हूं, आप करें उनके लिए संकल्प, ये बच्चा ये आत्मा बहुत चरित्रवान है, ये महान आत्मा हमारे घर में आई है। आप माताओं के हाथ में ये ताकत है अपने बच्चों की संतानों की जीवन का निर्माण करना। मैं इसमें थोड़ा सा जोर दूं, आप बच्चों को उठाते हैं, प्राय माताएं उठाएंगी, अब बच्चे तो सुस्ती करेंगे ही, करवट बदलेंगे, कितनी बार में उठ जाते हैं बच्चे बोलो कोई 2 बार में, कोई 3 बार में, अब 2-3 बार हो गया माता जी को झुंझलाहट हो रही है, अब वो किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही है और वो उठता नहीं है, अब उसको स्कूल भेजना है, तो क्या महावाक्य उच्चारण करती है माताएं, फिर शैतान कहीं का, उठता नहीं है, तंग कर दिया मुझे, खून पी गया मेरा तो, कुंभकर्ण की औलाद है, अपने को भी कुंभकर्ण बता देती 2-4 माँ बाप उच्चारण करके एक आधा लगाकर उसे उठा देती है। यहाँ गलती हो रही है, सवेरे उसका अंतर मन जगा है, सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं इंग्लिश में, वो ग्रहण करेगा। मान लो वो इसको न भी सुन रहा हो लेकिन इसका बुरा इफेक्ट उसके अंतर मन में समा रहा है। अब बच्चे तंग करते हैं, माताएं भी क्या करें, लेकिन कोशिश करेंगे आप उन्हें बहुत अच्छे शब्द बोले, बहुत अच्छे शब्द बोले। देखो हमारे सामने उदाहरण है शिवाजी का, उसकी माँ ने, हम लोग तो इतना ही पढ़ते थे कि उसकी माँ ने उसको महाभारत और रामायण की कथाएं सुनाई, उसको वीर बना दिया, लेकिन और भी तो कुछ सुनाया होगा ना, वो सबको क्या पता क्या सुनाती थी, पर निश्चित रूप से उसने उसको बहुत अच्छा अच्छा सिखा दिया था। तो सभी ये काम करेंगे, पसंद है, हम बहुत भाग्यवान हैं। फिर से आ जाएं टॉपिक पर, बहुत भाग्यवान हैं जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहे हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं जिनको खिला भी भगवान रहे हैं। वैसे तो लोग कहते ही हैं, हम सब भी कहते थे भगवान खिलाता है, पर अब प्रैक्टिकल में हमें वे खिला रहे, और किनको खिलाएंगे, नहीं बच्चे तो उनके सारे हैं। और गहराई में चलो, जो ये मान लेते हैं मेरा घर बाबा का यज्ञ है, ये सभी गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने पक्का करें, मेरा घर बाबा का यज्ञ है, और हम कौन हैं उस यज्ञ में, पवित्र ब्राह्मण संभालने वाले, भले ही आपके घर वाले ज्ञान में ना हो, आप तो है ना, मैं हूं इस यज्ञ को संभालने वाली पवित्र ब्राह्मण, जो ऐसी भावना रखते। अब ये गहरी बात हो गई, कह तो दिया बाबा का यज्ञ है लेकिन प्रैक्टिकल में रहा मेरा घर है, तो असर आधा ही होगा, लेकिन बिल्कुल नेचुरल कर दें, जैसे यहाँ ये यज्ञ है, अभी हम तो यज्ञ में, हम तो बड़े यज्ञ में हुए हैं, हमें रहता है ना ये बाबा का है, इससे ही हम बड़े हुए, इससे हमने खाया पिया कपड़े पहने, इसी से सब हमारी पालना हुई, आपको भी थोड़ा तो रहता होगा, जैसे यहां हमको रहता है घर में भी रहने लगे, ये बाबा का यज्ञ है, हमें उसने यज्ञ रचकर संभालने के लिए दिया है, हमें ईमानदारी से संभालना है। तो अगर ऐसी भावना कर लेंगे, भाई दूसरी निकाल दो कोई, अगर ऐसी भावना कर लेंगे, ले लो भाई ले लो, मत है नहीं, दोबारा आएगा, इसको फाइनली बंद करा दूं, जरूरी हो तो बाहर जाके बात कर लेना। अगर ये भावना पक्की कर दी तो क्या होगा, ये बाबा के महावाक्य हैं, साकार में भी हमने सुने, अव्यक्त में भी सुने, आप इन्हें पक्का कर दें। जो बच्चे अपने घर को बाबा का यज्ञ समझते हैं, वो मानो ब्रह्मा भोजन ही खाते हैं। और बाबा ने देखो कितनी बड़ी बात कह दी, उनके भंडारे और भंडारी। अभी देख लो आप, मेरा यज्ञ मेरा घर, तो भंडारे खाली भी हो सकते हैं, चोर भी ले जा सकते हैं, और बाबा का सदा भरपूर। बाबा का है सब कुछ, आगे चल के इसका महत्व समझ में आएगा। बाबा का सब कुछ है, जब मां विनाश होगा तो सबका सब कुछ जाएगा या नहीं? मान लो किसी के पास 50 करोड़ भी हैं, जाएगा या नहीं? लेकिन अगर उसने कर दिया होगा, ये सब बाबा का है, तो उसका जाएगा नहीं, ट्रांसफर हो गया, सतयुग में मिल गया उसको। यज्ञ रहस्य जानते हुए ये जो मेरापन है, इससे बाहर आना है। ऐसे ही बाबा ने कहा बहुत अच्छी बात, ये भी माताओं की है, बाप अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। याद हो आपको, बाबा ने कहा मुरलियों में, जो बाबा के बन गए उनको दाल रोटी तो मिलती ही रहेगी, 36 प्रकार के भोजन न भी मिले लेकिन वो भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे बाप को रोज भोग लगाते हो, बाप भूखा नहीं रहता तो बच्चों को भूखा कैसे रखेगा, है ना राज? कितनी समीपता है, हमारी भावनाओं का कितना सम्मान करता है वो, जो स्वयं भगवान है, जो कभी नहीं खाता भोगता है, वो कहता है मुझे खिलाओ, पहले स्वीकार करो। कराते हैं या नहीं? भाइयों का क्या प्रोग्राम है? माताएं तो कहेंगी हम भोग लगा देते हैं, कभी कभी तो लगाते हैं, जो रोज लगाएंगे वो रोज भोजन खाएंगे विनाश में भी, जो कभी कभी लगाएंगे वो आप सोच लो आगे, मैं नहीं कहूंगा। ये भाई लोग लगाते हैं, भोजन की थाली तो सामने आती है ना, बहुत शुद्ध हृदय से बाबा का आह्वान करें, बाबा को शुक्रिया करें, आप हमें ब्रह्मा भोजन खिला रहे हो, पालना हो रही है, भोजन ना हो देखो क्या हो जाए, आप हमारी पालना कर रहे हो। प्रकृति को भी शुक्रिया करें, जहां से ये भोजन आया है। फिर दो चार अच्छे संकल्प करके, मैं परम पवित्र आत्मा हूं, ये भोजन औषधि है, आप जो इस भोजन से चाहते हैं ना वो संकल्प करो, इसमें इस भोजन में रोगों को ठीक करने की संपूर्ण शक्ति है, खाओ रोग ठीक होंगे। ये बहुत बड़ी साइंस है, ये जो संकल्प आप भोजन में भर दोगे वही इफेक्ट खाने पर होगा। और अगर नाक चढ़ाई, भिंडी बना दी है, तेल बहुत है, ये खराब चीज है, क्या भोजन बना दिया, यज्ञ वाले जानते ही नहीं कुछ, पता नहीं कैसा बनाते हैं, हम तो अपने घर में ठेसा भी खाते हैं, ये भी वो भी, बड़ा चटपटा माल मसाला, तो क्या होगा? क्या होगा? वो भावना ही खत्म हो गई। और किसी किसी को क्या होता है, ये बनाने वालों की बात है, मान लो बहुत अच्छे समोसे बन रहे हैं, खाने की इच्छा हो गई, खा तो नहीं सकते पर इच्छा हो गई, क्या हो गया, झूठा हो गया, उसका भोग बाबा स्वीकार नहीं करता। इसलिए बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है, साकार मुरली से है, मैं तुम्हारा भोग तब स्वीकार करता हूं जब तुम संपूर्ण पावन बन जाते हो। करता तो वैसे है, पर जिसको रियल कहते हैं ना, हमने भेजा और बाबा ने स्वीकार किया। आपको बता दूं एक अनुभव, नीचे किचन बना, 5-7 साल पहले की बात है, जो अब कच किचन बना आधुनिक। बाबा को भोग लगाना था, सब दादियां आ गई किचन में ही, वो चूल्हे और प्लेटफॉर्म बना हुआ उसको ही सजा के सब दादियां बैठ गई और भोग लगा बाबा को। गुलजार दादी थी, गुलजार दादी ने भोग लगाया, संदेश सुनाया। वो एक मिनट में भोग लगा के आ गई। क्या संदेश था? मैं बाबा के पास गई, बाबा ने कहा बच्ची किचन से आई हो? हाँ बाबा। डब्बी हलवे की खोली, खुद खाया और जाओ। इतना आनंद आया सबको सुनने पर, एक मिनट में सारा काम, खुद ही खोल ली, खुद ही खाके स्वीकार करके नीचे भेज दिया। ये प्यार की बात है, ये अपनेपन की बात है। भगवान को बांधा जा सकता है किसमें? प्यार और, अरे स्नेह तो प्यार को कहते हैं, प्यार और भावनाओं में, प्यार और भावनाओं में उसको बांधा जा सकता है। निश्चित रूप से भोग में बहुत ताकत है। जगदीश भाई कहते थे भोग लगाओ भोग ना मिटाओ। मैंने भी एक दिन प्रयोग किया है, तो प्राइवेट बात, मैंने सोचा हम भोग तो लगता ही यज्ञ में, मैं भी तो लगा दूं एक दिन अपने ढंग से। और लक्ष्य ये था कि भोग ना मिट जाए थोड़ी बहुत जो बीमारी। बहुत अच्छे अनुभव हुए, अपने हाथ से बनाकर बहुत प्यार से बाबा को स्वीकार कराओ, फिर खाओ, अनेक भोगनाएं व्याधियां मिट जाएंगी। तो हम बहुत भाग्यवान हैं जिनका साथी स्वयं भगवान है। देखो कितना वंडरफुल खेल हुआ। 5000 साल पहले हमने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, बाबा की मुरलियों में आता ना, सेकंड बीते, मिनट बीते, मास बीते, वर्ष बीते, युग बीते, बिताते बिताते यहाँ आ गए। कलयुग के अंत में जब हम पहुंच गए तो लंबी यात्रा करके थक गए थे ना, थकान मिटाने के लिए कौन आ गया? पैर दबा दिए, माताओं के दबाए, बाबा भाइयों के नहीं दबाता। द्रौपदी के पैर दबा के सारी थकान उतार दी। हुआ या नहीं? मीठे बच्चे बोल के ही थकान हर ली। सारे बोझ मुझे दे दो ये कहकर बोझ मुक्त कर दिया। मैं तुम्हारा साथी हूँ, रियलाइज करें सभी। साथियों पर कितना अधिकार होता है। माताएं ज्यादा अनुभवी, भाई भी जो मैरिड हैं, जीवन साथी पति पत्नी, कैसा नाता होता है। एक को कष्ट आ गया फट से दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे के कष्ट मिटाते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते। ये नाते इसीलिए तो हैं। आजकल के नाते भले ही लड़ाई झगड़े के हो गए हों, पर ये लड़ाई झगड़े के लिए नहीं है नाते, नाते सुखों के लिए थे। कि मनुष्य अकेला नहीं चले जीवन की यात्रा में, साथी उसके साथ हो। तो भगवान साथी बन गया, जीवन साथी। इसको अपने नशे में लाएं, इसका यूज करें। हम अकेले नहीं हैं। माताएं जब मुझे कहती है ना, कल भी एक माता ने कहा मुझे अकेलापन बहुत महसूस होता है। ज्ञान में कितने समय से? 20 साल से हूं। मैंने कहा अकेलापन 20 साल के बाद भी? बाबा साथी नहीं है? नहीं, बाबा तो है, पति है, पति भी है, बच्चे हैं, बच्चे भी हैं। क्यों अकेलापन है? बड़ी गहरी बात है ये। इस समय अनेक आत्माओं के पाप कर्म जागृत हो रहे हैं, वो सुखी नहीं रहने देते। सब हैं, लौकिक भी तो हैं, लेकिन उसको अकेलापन लग रहा है। मैंने कहा तुम इन सब को भूल कर अब रोज ये धुन लगाओ, स्वयं भगवान मेरा साथी है। मैंने उसको काम दिया 7 दिन तक सौ बार याद करो रोज, केवल याद करो। कहा मुझे कोई अनुभव ही नहीं होता, यह भी बहुतों के साथ हो रहा है। मैंने उसको समझा दिया, भूल जाओ कि कुछ अनुभव होगा। सौ बार करो, सात दिन में ही आपको सुंदर अनुभव होंगे, पहले दिन नहीं होगा। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन अभ्यास किया, अरे कुछ तो होता नहीं, छोड़ो। ये बहुत बड़ी गलती है। जैसे डॉक्टर दवाई देता है, कभी कभी दो चार दिन असर नहीं होगा, उसके बाद तेजी से होगा। तो सात दिन में अच्छा अनुभव होने लगेगा। तो हम बहुत भाग्यवान हैं जिनको जीवन की अंतिम यात्रा में भगवान का साथ मिला। अंतिम यात्रा वो नहीं अर्थी वाली, 5000 साल के अंत की यात्रा में। और बताओ कौन सा भाग्य, अभी भाई लोग बताएंगे, कौन सा सुंदर भाग्य है हमारा। स्वयं भगवान ने विजय का तिलक लगा दिया है, वरदान दे दिए हैं। बताते जाओ फटाफट, जिसको जो ख्याल आए, कौन सा भाग्य है हमारा। अतिन्द्रिय सुख प्राप्त होने लगा। देखिए भाग्य की निशानी एक मुरली है व्यक्त बाबा की, इसमें पूरी भाग्य की निशानी होती है, घर बहुत अच्छा हो, शादी हुई तो पति बहुत अच्छा मिला, बच्चे बहुत अच्छे रहे, धन संपदा बहुत अच्छी हो, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, काम धंधे अच्छे हो, यही तो श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो बाबा ने गिनाया था, देखो तुम्हारा अलौकिक सब कुछ सुंदर है। काम कौन सा मिला, आजकल किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, इंजीनियरिंग की है, सरकारी नौकरी मिल गई, वाह, माताजी सबको फोन करके बताएगी मेरे लड़के को गवर्नमेंट सर्विस मिल गई है। हमें कौन सी सर्विस मिली, भगवान ने काम दे दिया हमें, अपने काम में लगा दिया। और सैलरी कितनी देगा, तनख्वाह कितनी, रोज की कितनी मिलेगी वो भी गिनती नहीं हो सकती। बाबा कहते एक एक कदम में पदम। कितना बड़ा काम मिला, परिवार अति सुंदर, ये महान आत्माओं का परिवार, सोच के देखो, इष्ट देव देवियों का परिवार। कई लोग कहते हैं इस परिवार में भी तो टकराव होता है, बाबा ने उत्तर दिया, टकराव इसलिए होता है तुम सब आपस में जन्म जन्म के साथी हो, अब कभी अच्छा किया कभी गड़बड़ भी तो की थी, इसलिए थोड़ा बहुत यहाँ चलता रहता है, इसका कोई महत्व नहीं है। महान आत्माओं का, पुण्य आत्माओं का, भगवान के बच्चों का परिवार, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का परिवार, जिसको बाबा कहते हैं तुम्हारा कुल सर्वश्रेष्ठ है। कलियुगी ब्राह्मणों का कुल सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो तो न जाने कहाँ चले गए, वो तो आजकल कहाँ चले गए हम तो बता भी नहीं सकते, पंडित लोग ही हमें बताया करते हैं। जो बेचारे अच्छे पंडित हैं कहते हैं ब्राह्मणों के घर में मांस पकने लगा, हमें बड़ी लज्जा आती है। कलियुग का अंत है ना, ये सब तो होना है। सर्वश्रेष्ठ कुल है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का, ब्रह्मा वत्स के परिवार है ये सर्वश्रेष्ठ कुल, ब्रह्मा के वत्सों का कुल है। तो कितना अच्छा कुल हो गया हम सबका। बाप कौन है, माँ कौन है, ब्रह्मा सरस्वती। कितनी माँ हो गई हमें भी, बाप तो तीन है पर माँ भी कम नहीं है, तीन तो होनी चाहिए ना जब तीन बाप हैं तो। तो कितना सुंदर हमारा भाग्य है। और भाग्य बताओ हमारे हाथ में, देखो पीछे मुरली आई, तुम विधाता हो मास्टर, भाग्य विधाता। तो इतना भाग्यवान बना दिया बाबा ने हमें कि हम दूसरों का भी भाग्य बनाने वाले बन गए, हम दूसरों के भाग्य को जगाने वाले बन गए, हम दूसरों को भगवान से मिलाने वाले बन गए। मिला सकते हैं, कौन कौन माताएं मिला सकती हैं किसी को भगवान से, कोई धीरे हाथ उठा रही, कोई सोच रही है अभी। मिला सकते हैं ज्ञान देकर, उसका बुद्धि योग ऊपर लगवा दिया तो मिलन होने लगा ना रोज। ये सब हमारे हाथ में है, हमारे अधिकारों में आ गई हैं चीजें। और बताओ, किसी को याद आया कुछ, कौन सा भाग्य मिला है? चार लोगों का परिवार और पांच पुष्पक विमान, ज्यादा भी तो हो सकते हैं। बाबा ने कहा परिवार का भी होगा, दो का भी होगा, एक का भी होगा। कहीं एक को जाना है, फट से बैठे चले गए। पूरे परिवार को पिकनिक पे जाना, चार पांच छह और भी तो होंगे ना, सबको बैठा के चल दिए। इशारे से चलेगा वो। ये विज्ञान ही अब का, जो अब की साइंस है ना, यही हम सबको पुष्पक विमान बनाकर देकर जाएगा। हम नहीं खोज करेंगे सतयुग में, देवता थोड़े खोज करेंगे, विज्ञान पढ़ाया थोड़े जाएगा वहां, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, यही के वैज्ञानिक अब इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर बढ़ेगा। देखो कारें और ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी की ओर तो बढ़ गई, इलेक्ट्रिकल कारें आएंगी, चलेंगी, तेल की जरूरत नहीं रहेगी। इसके बाद नंबर है इलेक्ट्रॉनिक्स कारें, एटॉमिक एनर्जी से चलने वाले पुष्पक विमान। तो ये सब हम सब के लिए तैयारी हो रही है। तो बाबा अपनी महान आत्माओं के लिए सुंदर संसार रच रहे हैं। सोच कर देखो, आप भी घर बनाते हैं बड़ा नया बच्चों के लिए, बाबा भी अपने बच्चों के लिए सुंदर संसार, जिसको अल्लाह का बगीचा, खुदा का बगीचा, गार्डन ऑफ फ्लावर, बहिष्ट, क्या क्या नाम दिए हैं, वो बना रहा है। कल्पना करो संसार की, जहां अथाह धन संपदा होगी। हीरे मोती वैसे ही बिखरे पड़े होंगे जैसे आजकल पत्थर पड़े रहते हैं। सुने हैं ना बाबा के महावाक्य, उनकी कोई कीमत नहीं होगी, पैसे से लेन देन नहीं होगा, वस्तुओं का लेन देन होगा। बाबा ने मधुबन का उदाहरण दिया था, जैसे तुम्हारे मधुबन में हरेक की अपनी अपनी ड्यूटी है, हरेक का अपना अपना डिपार्टमेंट है, भाई जिसे बिस्तर लेना हो बिस्तर देगा, पैसे थोड़ा ही लेगा रिटर्न में। बर्तन वाले बर्तन रखेंगे, सब्जी आएगी सब्जी कटेगी, भोजन बनेगा खाएंगे, चार्ज थोड़ा ही लिया जाता कि 100 रुपए की थाली है, नहीं ना। ऐसे ही सतयुग में होगा लेन देन, इसने कपड़ा दिया उसने दूसरी चीज दी। तो बहुत सुंदर भाग्य हम सबका युगों के लिए जग रहा है। अब हमारे हाथ में है, हम अपना भाग्य कितना जगाएं, कितना बनाएं, ये हमारे हाथ में है। किस किस से भाग्य बनता है? पुण्य कर्मों से, पढ़ाई से, योग से, बोलते जाओ, सेवा से। जो आप सब सेवा में आए हैं ना, इसे भाग्य निर्माण हो रहा है। हाँ, ज्ञान गुण शक्तियां सबका दान करने से भाग्य बनता है, श्रीमत पर चलने से भाग्य। हमारा जीवन ही ऐसा हो गया ना, कदम कदम पर जो कुछ हम कर रहे हैं भाग्य बन रहा है। बाबा ने तो कह दिया भाग्य की रेखा खींचने की कलम तुम्हारे हाथ में दे दी गई है। अब माताओं को यदि कलम दे दी जाए ब्रह्मा जी के द्वारा कि दो बच्चे हैं इनका भाग्य लिख दो, क्या लिखेंगी माताएं? सोच लेना आज सोने से पहले। ब्रह्मा जी ने भाग्य लिखने की कलम मुझे दे दी और कहा तुम्हारे जो दो तीन बच्चे हैं इनका भाग्य लिख दो, जो तुम लिख दोगी बस वही फाइनल। सोच लेना क्या लिखेंगे। और अगर वो कह दे कि भाग्य में तीन ही बातें लिखनी हैं तो क्या लिखेंगे, जिसमें सब कुछ माल मिल जाए। मेरा पोतरा सोने की चम्मच में, सोने के महलों में बैठकर, सोने की थाली कटोरी में सोने का खाना खाए। फिर तो मुश्किल हो जाए। भक्ति में है, एक ने मांग लिया कि जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोना हो जाए, तो रोटी को हाथ लगाया सोना, पानी को हाथ लगाया, अब क्या पिए क्या खाए, परेशान होके भगवान जी के पास पहुंच गया, अपना वरदान वापिस लो, हम जैसे थे वैसे ही ठीक है। तो भाग्य बन रहा है हमारा यज्ञ सेवाओं से, ज्ञान दान से, गुण शक्तियों के दान से, दूसरों को सुख देने से, दुआएं देने से और दुआएं लेने से। तो देखिए सब कुछ हमारे हाथ में आ गया ना, तो भगवान और भाग्य दोनों हमारे, तो आनंद लेंगे ना इसका बहुत कुछ। तो सभी इस अति आनंद में रहकर यज्ञ सेवा करें, कदम कदम पर भाग्य बन रहा है। ओम शांति।
बस दो घड़ी।